आज कल
श्रोताओ, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में इस बात की समीक्षा की जाएगी कि इराक में 3 वर्षों तक आतंकवादी गुट दाइश की उपस्थिति से इस देश को, कृषि क्षेत्र को कितनी क्षति पहुंची। मरियम मेहरदादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से इराक की स्थिति अब अच्छी नहीं है। ये देश इस समय खाद्य पदार्थों के आयात पर ही निर्भर है। उदाहरण स्वरूप, इराक ने सन 2011 के दौरान खाद्य पदार्थों के आयात पर 4.6 अरब डॉलर खर्च किए थे। इसी दौरान इराक ने मात्र 55 मिलियन डॉलर का निर्यात किया। इसमें भी 80% निर्यात खजूरों का था। इराक पर दाइश के कब्जे से पहले इस देश की सरकार की ये योजना थी कि वो गेहूं सहित कुछ अनाजों के उत्पाद में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही कुछ कृषि उत्पादों के आयात की मात्रा को घटाएगी। दाइश के आक्रमण और कृषि योग्य भूमियों के साथ दाइशी आतंकवादियों के अमानवीय व्यवहार ने इराक के किसानों और कृषि की भूमियों को बहुत अधिक क्षति पहुँचाई।
पिछले 3 वर्षों के दौरान इराक की गेहूं की खेती योग्य 40% भूमि दाइश के नियंत्रण में चली गई। इराक में पैदा होने वाले गेहूं का 27% नैनवा प्रांत में पैदा होता है। नैनवा प्रांत ही इराक का वो प्रांत है जहां पर दाइश का नियंत्रण अधिक मजबूत था। इराक के कृषि मंत्रालय के अनुसार देश पर दाइश के आक्रमण से कृषि उत्पाद में 40% की कमी आई। कृषि उत्पाद में इस कमी के कारण इराक को अब तक लगभग 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है।
दाइश के आतंकवादियों ने इराक को कृषि के क्षेत्र में जो क्षति पहुंचाई है उसमें कृषि योग्य भूमियों का जलाया जाना भी शामिल है। इराक के जिन जिन क्षेत्रों से दाइश के आतंकवादियों को इराकी सेना के मुकाबले में पराजय का मुंह देखना पड़ा था, वहां से भागते समय दाइशी आतंकवादियों ने उन क्षेत्रों की कृषि योग्य भूमियों को आग लगा दी। इस प्रकार दाइशी आतंकवादी स्थानीय लोगों को जली हुई भूमि उपहार स्वरूप दे गए। इस बारे में अमरीकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी ने लिखा है कि दाइश के आतंकवादियों ने इराक में कृषि योग्य बहुत सी भूमियों को आग लगाने के साथ ही फसलों को भी जला डाला।
इन आतंकवादियों ने जानबूझकर इराक के कृषि ढांचे को नुकसान पहुंचाया। हर उस स्थान पर जहां दाइश का नियंत्रण था और जहां से उन्हें विवश होकर भागना पड़ा, वहां पर उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में खेतों को जला दिया। इस संबंध में इराक के अजीम क्षेत्र के एक अधिकारी अब्दुल जाबिर अल ओबैदी कहते हैं कि दाइश के रॉकेट के हमलों में गेहूं की खेती योग्य 35 हेक्टेयर भूमि जलकर राख हो गई।
दाइश ने इराक में कृषि को जो क्षति पहुंचाई है उसका एक रूप ये भी था कि उसने कृषि के उत्पादों और कृषि के उपकरणों की खुलकर तस्करी की। अब दाइश के इराक से बाहर हो जाने के बाद पता चला है कि दाइश के आतंकवादियों ने इन क्षेत्रों के अतिक्रमण के दौरान किस प्रकार से सुनियोजित ढंग से कृषि उत्पादों और उपकरणों की तस्करी की। वर्तमान समय में इराक के बहुत से क्षेत्रों में खेती में प्रयोग होने वाले उपकरणों का अभाव है। दाइशी आतंकवादियों ने खेतों को जलाने के अतिरिक्त जंगलों को भी आग लगाई। उन्होंने सेना के मुकाबले में जंगलों को ढाल के रूप में प्रयोग करते हुए उनमें आग लगा दी।
दाइश के इस जघन्य अपराध का परिणाम ये निकला कि वर्तमान समय में इराक में कृषि योग्य अधिकांश भूमि फिलहाल खेती के योग्य नहीं रही। इराक में गल्ले की पैदावार वहां की अर्थव्यवस्था का एक स्तंभ हुआ करती थी, लेकिन दाइश की जघन्य कार्रवाइयों के कारण इराकी अर्थव्यवस्था का यह स्तंभ लगभग धराशायी हो चुका है। उस भूमि से गेहूँ और जौ की खेती हुआ करती थी, 80% से अधिक भूमि नष्ट कर दी गई। नैनवा प्रांत में गेहूँ पैदा करने योग्य 32% भूमि नष्ट हो चुकी है। नैनवा प्रांत में प्रतिवर्ष लगभग $495 मिलियन का गेहूँ पैदा किया जाता था। इसी प्रकार इस प्रांत में लगभग $119 मिलियन मूल्य के जौ की पैदावार होती थी।
दाइश के आतंकवादियों ने इराक में गेहूं के भंडारों पर कब्जा करके उन्हें नष्ट कर दिया, जिनका मूल्य सामान्यतः $614 मिलियन था। इस प्रकार से दाइश ने इराक के कृषि क्षेत्रों को उल्लेखनीय क्षति पहुंचाई। कृषि के अतिरिक्त दाइश ने इराक के पशुपालन क्षेत्र को भी क्षतिग्रस्त किया। ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि जिन क्षेत्रों में दाइश का नियंत्रण था वहां पर 80% भेड़ें, 50% गाय, 90% मुर्गे और इसी प्रकार से कई अन्य प्रकार के जानवर समाप्त हो गए।
दाइश ने इराक में जो अपराध किए हैं उनमें से कुछ के परिणामों को देखा जा सकता है, जबकि कुछ ऐसे भी दुष्परिणाम हैं जो स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं देते। कृषि योग्य भूमियों का नष्ट हो जाना और कृषि के उपकरणों की व्यापक स्तर पर चोरी और उनकी तस्करी जैसी बातें हैं जिनको महसूस किया जा सकता है, किंतु कुछ प्रभाव ऐसे हैं जिन्हें सीधे ढंग से महसूस नहीं किया जा सकता। दाइश के अपराधों के कारण बहुत बड़ी संख्या में इराकी किसान बेरोजगार हो गए। ये बेरोजगार किसान निकट भविष्य में खेती किसानी कर ही नहीं सकते, क्योंकि न उनके पास कृषि योग्य भूमि है और न ही दूसरी कोई अन्य भूमि है जिस पर वे खेती कर सकें।
अब ऐसी स्थिति में इराकी सरकार को इस देश के किसानों को हर्जाना बड़ी संख्या में देना पड़ेगा। दाइश ने इराकी किसानों की फसलों पर कब्जा करके उनकी तस्करी की, जिसके कारण किसानों को उनकी फसल भी नहीं मिल पाई और दूसरी ओर उनकी जमीन जलने के कारण खेती योग्य अब वो नहीं रह गई है। इन बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इराक में निकट भविष्य में खेती किसानी की कोई संभावना नहीं है, जिससे इस देश की कृषि के पनपने में लंबा समय लगेगा।
इराकी कृषि योग्य भूमियों के नष्ट होने से इस देश को अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार से नुकसान होगा। बताया जा रहा है कि दाइश की अमानवीय कार्रवाइयों के कारण इराक में कम से कम 10 लाख हेक्टर भूमि अब खेती किसानी के योग्य नहीं रही है। यही कारण है कि इराक में विगत की तुलना में खाद्य सुरक्षा का स्तर बहुत नीचे चला गया है। इसमें सुधार के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी और समय भी काफ़ी लगेगा।
इस बारे में अंतिम बात यह है कि दाइश के इराक से खात्मे के बाद इस देश को किसानों के जीवन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। इस देश की सरकार ने आतंकवाद का शिकार होने वालों के लिए क्षतिपूर्ति का प्रबंध किया है। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति का कहना है कि उसके पास सन 2016 में ऐसे 15,000 लोगों की शिकायतें हासिल हुई हैं जिन्हें आतंकवादियों से नुकसान पहुंचा था। इस क्षति का अनुमान लगभग $59 मिलियन लगाया गया है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि 15,000 शिकायतकर्ताओं में किसानों की संख्या कितनी है, किंतु एक वास्तविकता है कि जिन किसानों को दाइश से नुकसान हुआ है उनकी संख्या इससे कहीं अधिक है। ऐसे किसानों की क्षतिपूर्ति और उनके लिए सम्मानित जीवन आरंभ करने के लिए केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता की भी आवश्यकता है।